हरि बोल। राय श्याम प्रभु,
आई एम हियर प्रभु जी। यस
वी
प्रभु,
कैन स्टार्ट नाउ।
यस यस प्रभु, श्योर प्रभु।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग अस्त्रोत्रम तक कथा सुने थे। अस्त्रोत्रम मतलब देवकी और वसुदेव जी जो प्रार्थना किए थे वो कल हम लोग सुने थे। नहीं हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू सी द डिवोटीज, ओनली माई फोटो इज कमिंग। क्या करना चाहिए? एक सेकेंड, लेट मी, इट वॉज कमिंग बट व्हाट हैपेंड। ओके, सो
यू कैन सी गैलरी व्यू, ऑल डिफरेंट।
यस, या, बट नाउ आई कैन सी यू एंड दैट्स इनफ। तो सांत्वना भगवान दिए, प्रार्थना कर लिए, उसके बाद में अब सांत्वना भगवान दे रहे हैं। तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। माता देवकी ने भगवान से अंत में प्रार्थना किया, उपसंहर विश्वात्मन इदो विश्वात्मन इदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। तो भगवान अपना रूप त्यागने से पहले संतावना देना चाहते थे, बतलाना चाहते थे। तो श्री भगवान उवाच, त्वयम् एव पूर्व सर्गे भू कृष्णे कृष्णे स्वाम भुवे सती तदायम सुतपानाम प्रजापतिर अकल्मषः। अब माता पिता के स्तुति को सुन करके भगवान यहाँ पर संतावना दे रहे हैं और पूर्व जन्म का ज्ञान जो है उसको याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं त्वमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णे स्वयं भुवे स्वयं भुवे। तो 14 श्लोकों को के द्वारा भगवान सूचित करते हैं। अब ये 14 श्लोक के द्वारा सूचित करने का मतलब क्या है? तो इसका वर्णन किया गया है कि जो प्रार्थनाएं थी वसुदेव जी ने भगवान के चरणों में जो प्रार्थना किया था और माता देवकी ने जो प्रार्थना किया था, उन प्रार्थनाओं के संबंध में हम लोग ज्यादा विस्तार से तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बात जरूर करेंगे। वसुदेव जी 14, मैं कल बताया था कि 14 श्लोकों में वसुदेव जी प्रार्थना किए थे और 10 श्लोकों में माता देवकी ने किया था। तो इसका कारण क्या था? 8 और 14, बस देव जी 10 श्लोक में किए थे और देवकी जी 8 श्लोक में, और भगवान यहां पर 14 श्लोकों में संतावना दे रहे हैं। तो 14 श्लोक का कारण क्या है, ये क्या सूचित करता है? तो जो ज्ञान के स्रोत हैं वे हैं भगवान, और वो उन भगवान का वर्णन जहां पर हुआ है वह 14 प्रकार से हुआ है। 14 प्रकार की विद्याएं हैं जिनसे भगवान को हम जानते हैं या भगवान के विषय में बताया गया है, जैसे ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये चार वेद हैं। ये चार वेद में भगवान के विषय में वर्णन किया गया, वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो। तो भगवान के विषय में जो ज्ञान है, वेद जो है भगवान से अभिन्न है, तो चार वेद हैं। उसके बाद 6 प्रकार के वेदांग हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, ये सब 6 वेदांग हैं। तो ये सब भी भगवान का वर्णन करते हैं। उसके बाद स्मृति, पुराण, मीमांसा तथा तर्क, इन 4 के द्वारा भी भगवान को जाना जा सकता है। तो सब मिलाकर के 14 प्रकार के विद्या हुए। तो 14 श्लोकों में चतुर्विदाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम का वर्णन है, इसलिए देवकी और वसुदेव के पुत्र में के भगवान अवतीर्ण हुए और 14 श्लोकों से इस बात को बताए हैं। अब यहां पर शब्द आया, शुरू करते हैं भगवान त्वम एव। एव जो है वो निश्चयता के लिए बताया गया है, ये कहते हैं आप ही लोग हैं जो हमारे पूर्व स्वर्ग में माता पिता हुए थे, दूसरा कोई नहीं। पूर्व सर्वे का मतलब सृष्टि काल में जो प्रथम कल्प था, वो प्रथम कल्प में जो सृष्टि हुआ तो प्रथम कल्प में ये पिशनी और सुतपा नाम के 2 प्रजापति थे, ये बहुत तपस्या किए और भगवान को प्रसन्न किए थे। तो अब उन्हीं लोगों के संकल्प हैं त्वम एव, आप ही वही हो, कोई दूसरा नहीं है। और यहां पर देवकी को यहां पर सती शब्द कहते हैं भगवान। सती का मतलब है भक्तिमयी माता, पतिव्रत धर्म को यहां पर दर्शाया गया है। तो इनको माता को सती कहा गया है और पिता के लिए कहते हैं प्रजापति अकल्मषः, पिता के लिए कहते हैं कि आप अकल्मष हैं। तो भगवान को अपना कोई बेटा बनाना चाहता है तो यह गुण होना बहुत जरूरी है। माता कैसी हो? माता सती हो। सती मतलब जो सत के उपासक हो, सत्यम परम धीमहि, जो सत पर ध्यान करने वाली हो, यानी भक्तिमयी माता हो, प्रतिव्रत धर्म के पालन करने वाली हो माता। और पिता कैसे हो? अकल्मषः यानी काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लोभ इत्यादि जो 6 विकार हैं, उन 6 विकारों से उन्हें परे होना चाहिए। अब कहते हैं कि आप सब लोग जुआमयी ब्रह्मणा आविष्टो प्रजा सर्गे यदा ततः संयमेन्द्रिय ग्राम ते पाथे परम तप। जब ब्रह्मा जी जब भी क्रिएट किए बच्चों को तो उन्होंने कहा तुम लोग सृष्टि करो, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए आए थे। चतुष कुमारों को ही बोले तुम लोग सृष्टि करो, तो चतुष कुमार लोग तो बहाना बना दिए कि बहाना नहीं सत्य ही कहे कि कौन है घर गृहस्थ में फंसने जाए, हम लोग तो ब्रह्मचारी रहेंगे। तो वैसे भी वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार प्रथम वर्ण का जो निर्माण हुआ है, सृष्टि हुआ है, वे हैं ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु और माता पिता का आज्ञा हमेशा पालन करना चाहिए, कभी भी माता पिता का चाहे गुरु का आज्ञा उल्लंघन नहीं करना। लेकिन जब विवाह का बात आता है तो वहां पर उल्लंघन कर सकते हैं, कंसेशन है। और हमारे आचार्य जो हैं इसके लिए चतुष कुमार लोग हैं, तो वो लोग आचरण किए और उसी रास्ते पर हम लोग भी चल सकते हैं, तो कंसेशन है। लेकिन अन्य लोग जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि क्या करना चाहिए। शादी विवाह के बाद हनीमून पर नहीं जाना चाहिए, शादी विवाह के बाद तुरंत। शादी करते हैं किस लिए? दो काम के लिए। स्त्री संग दो काम के लिए होता है, एक प्रजा उत्पत्ति के लिए, पुत्र उत्पत्ति के लिए, और दूसरा इंद्रिय तृप्ति के लिए। भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है कि जो सेक्स लाइफ है वो दो काम के लिए है, एक पुत्र उत्पत्ति के लिए और एक आनंद के लिए। इस संसार में सब लोग आनंद चाहते हैं, तो आनंद के लिए। लेकिन ये पुत्र उत्पत्ति और आनंद से इंपॉर्टेंट है पुत्र उत्पत्ति, आनंद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सेक्स लाइफ है, चाहे वह पशु हो चाहे मनुष्य हो, सबके लिए सेम ही नियम है, दो काम के लिए, आनंद के लिए और बच्चा उत्पन्न करने के लिए। ये पशु पक्षी लोग हैं, वो लोग भी आनंद के पीछे नहीं भागते हैं, वो लोग उत्पत्ति करते हैं संतान। गाय ले लीजिए, गाय के संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन मनुष्य ही इतना गिरा है, चौपट प्राणी है, जो कि पुत्र उत्पत्ति बात तो छोड़ दीजिए, वो केवल आनंद में लगा रहता है। और आजकल तो वो विभिन्न प्रकार का तरीका है आनंद प्राप्त करने का सेक्स के द्वारा, और पुत्र उत्पत्ति तो प्रायोरिटी नहीं रह गई है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा, सृष्टि ही एकमात्र लक्ष्य था, और उसके लिए क्या करना पड़ता था? तपस्या। पहले तपस्या करो। अरे पानी में कूदने से पहले तैरना सीखना जरूरी है, यदि नहीं तैरना सीखे हैं, पानी में कूद जाए तो मर जाएंगे और क्या करेंगे। तो वैसे ही विवाह होने के बाद हमें सीखना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। ये शादी विवाह जो होता है वह भगवान के प्रसन्नता के लिए हम संतान उत्पन्न करें, यही लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये माता पिता भगवान कहते हैं कि आप लोग, ब्रह्मा जी ने जब आदेश दिया कि आप लोग सृष्टि करो, तो आप लोग तिपाथे परमम तपम, तिपेथे परमम तप, आपने परम तप किया, परमम तपम। ये तप जो समान तप नहीं था, ये जो किसी भी काम के लिए तप चाहिए, चाहे इंद्रिय तृप्ति करना हो तो भी तप चाहिए, बाल बच्चा पैदा करना हो तो भी तप करना पड़ेगा। पहले जमाने में छोटे में विवाह हो जाता, छोटे बच्चे थे, लड़का लड़की। आजकल तो सब कहते हैं पहले अपने पैर पर खड़ा हो, बाद में विवाह करो, तपस्या करो, जाकर के नौकरी करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, तब तो उसमें तपस्या करना पड़ता है, वो आसान कार्य नहीं है। तो तपस्या बहुत जरूरी है, तपस्या से ही ये प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप लोग कैसा तप किए थे? कहते हैं परमम तप, आप लोग समान तप नहीं किए थे, परम तप यानी भगवत विषयक तप किए थे, भगवान के प्रसन्नता के लिए, मुझे मेरे प्रसन्नता के लिए तप किए थे। तो जो भी हम काम करें, तप, यज्ञ, दान, ब्रह्मचर्य, जो भी काम करें भगवान के प्रसन्नता के लिए, हमारे कार्यों से भगवान संतुष्ट हो, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। तो यह तप जो है वो परम तप है। जैसे एकादशी, हम लोग एकादशी भुगते हैं, हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, तो तपस्या है, लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए हो तब तो ठीक है, तो ये परम तप कहलाता है। एनीवे, तो यहां पर कहते हैं परम तप। अब आगे कहते हैं कि वो तप आप लोगों ने कैसे कैसे किया, ये परम तप। तस्य तपसः प्रकारम आह, अब उस तपस्या के विषय में वर्णन कर रहे हैं, श्लोक संख्या 24 से लेकर के और 34 से लेकर के 36 के बीच में उस तपस्या का वर्णन किए हैं किस प्रकार से तपस्या किए। एक तो वर्षा के समय, वर्षा ऋतु के समय अनावरत एक स्थान पर, ऊपर न तो वृक्ष का छाया था न घर था, खुले आकाश में वे लोग बैठ करके तपस्या किए, मूसलाधार वर्षा का सहन किए, बात वायु पवन का वेग सब सहन किए, आंधी तूफान तथा सब सहन किए। उसके बाद दूसरा तपस्या होता पंचाग्नि। पंचाग्नि देखते होंगे आप लोग कि वो गर्मी के दिन में ऊपर से सूर्य तप्त हैं, चारों तरफ लोग आग जला लेते हैं, इस प्रकार से बैठ करके तपस्या किए। और तीसरा शीतकाल का तप, शीतकाल का तप आकंठ शीतल जल में बैठ कर करके, हमने खड़ा होकर के बैठ करके जो भी है, इस प्रकार से वे लोग तपस्या किए हजारों वर्षों। दिव्य वर्षा सहस्राणी, सालों भर हजारों वर्ष तक वे लोग तपस्या किए। तब भगवान कहते हैं तदामुआ परितुष्टो हम अमुनाम बपु साघने तपसा श्रद्धया नित्यम भक्तया च हृदि भावित। भगवान तपस्या श्रद्धा, तपस्या श्रद्धा और नित्य सेवामयी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यहां पर तीन चीज बताया गया है, तपस्या। और अब ये तपस्या विभिन्न प्रकार का होता है, भगवत गीता में इसका वर्णन किया गया है, वाणी का तपस्या होता है। हम लोगों को बकवास नहीं करना चाहिए, हमको वही बात कहना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित हो, कृष्ण संबंधित बात। प्रजल्प करना, प्रजल्प न करना तपस्या है। तो वाणी का तपस्या, खाने पीने में तपस्या, विभिन्न प्रकार की तपस्या है। तो तपस्या भगवान को प्रसन्न करता है तपस्या। और श्रद्धया, श्रद्धया का मतलब होता है अटूट विश्वास। जैसे अवश्य राखीब कृष्ण विश्वास पालन, ये अटूट विश्वास, श्रद्धा का मतलब है यहां पर अटूट विश्वास। और नित्य भक्तया, और नित्य निरंतर 24 आवर एडे सदा सम, निरंतर हो भक्ति और डेली हो, हेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। तो नित्य भक्तया, नित्यम भक्तया, 24 आवर ए डे भगवान के सेवा में, 365 डेज जो लगाता है, तपसा श्रद्धया नित्यम भक्तया च हृदय भावित। तो हृदय भावित, ये सब दिल से होना चाहिए, हृदय भावित, ये देखावटी पना नहीं होना चाहिए। भक्ति में देखावटी पना तो किसको हम धोखा दे सकते हैं, हम अपने को चीट कर रहे हैं। तो चाहे तपस्या हो, चाहे विश्वास भगवान में हो, चाहे जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो जिसको भगवान में विश्वास है वह जानता है कि अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन, और इस प्रकार से वह भजन कर रहा है। तो ये भी बात अच्छा है, हृदय भावित वही करें जो हृदय को अच्छा लगे, यानी बनावटी न करें, देखावटी न करें। भगवान क्वालिफिकेशन बताते हैं इन लोगों को कि आप लोग इस प्रकार से तपस्या किए, अजुष्टम ग्राम विषयम, आप लोग ग्राम विषय का सेवन नहीं किए, और जब मैं प्रकट हुआ उस समय आप लोगों ने संसारिक ग्राम्य भोगान भुंजातम जुआम प्राप्तम मनोरथम, गते मई जुआम लब्धवा बरम मत्सदिशम सुतम। जब मैं जन्म लिया तो उस समय नहीं, आप ग्राम विषय में फंसे हुए नहीं थे, आप लोग आप एक निष्ठ भाव से मेरा भजन कर रहे थे। और जब मैं आया तो आप लोग ग्राम में भोगान भुजान भुंजा था जुआम प्राप्तम मनोरथम, आप लोग मुक्ति नहीं मांगे, आप लोग मुक्ति नहीं मांगे, ग्राम ग्राम भोगान मतलब इंद्रिय तृप्ति का विषय वस्तु नहीं मांगे, धर्म देही जन्म देही ये सब वस्तु आप नहीं मांगे, यहां तक मुक्ति भी। तो ये समझना चाहिए ग्राम भोगान भुंजानाम, इसका अर्थ समझना चाहिए कि आप लोगों ने कोई विषय विषय वस्तु को नहीं मांगे, इंद्रिय तृप्ति के विषय को नहीं मांगे, यहां तक कि मुक्ति भी यहां पर आ जाता है, वो भी मुक्ति भी एक तरह से इंद्रिय तृप्ति है। महाप्रभु कहते हैं धन जन नहीं मांगी कविता सुंदरी सुधा भक्ति दिह मोरे कृष्ण कृपा करी, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ए मम जन्म ने जन्म स्वरे, मुक्ति भी नहीं, मुक्ति भक्त लोग नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों ने ये सब नहीं मांगा, आप लोग जुआम प्राप्तम मनोरथम, आप लोग मेरे समान पुत्र चाहते थे, गते मई जुआम लब्धवा, जब आप लोग मुझको देखे लब्धवाम वरम मत्सदृशम सुतम, तो आप लोगों ने वर मांगा, क्या वर मांगा, वह वर मांगा कि मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो। अब यहां पर मैं आया हूं वही हूं, आप माता ने कहा कि अपना ये रूप त्याग दीजिए और इसीलिए मैं यह रूप आपको दिखाया कि इसी रूप में आप लोगों ने हमसे मांगा था कि पुत्र हो। अब यहां पर भगवान अब खुलासा कर रहे हैं कि उस समय में चला गया, आप लोगों को एवं अस्तु कह दिया, पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन फिर मैं सोचा तो मेरे समान कोई और था ही नहीं, कोई था नहीं, अहम सूतो वामन भव कृष्ण गर्भ इतः सुतः, तो मैं यह सोचा तो मेरे समान कोई था नहीं, इसलिए मैं तीन बार जन्म लिया। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ देने के लिए कहता है और उसमें सामर्थ न हो तो उस व्यक्ति को तीन बार देना चाहिए, किसी वस्तु को तीन गुना देना चाहिए। तो जितने भी प्रचारक लोग हैं जो फंड कलेक्शन जाते हैं लाइफ मर्सी प्रीचिंग, उनके लिए बड़ा ये की पॉइंट है। यदि मान लो कोई आपको बोला था कि हाँ 1,00,000 रुपया दे देंगे भगवान की सेवा के लिए और किसी प्रकार से वो नहीं दिया, तो ये भागवतम का श्लोक याद करना चाहिए और बतलाना चाहिए, ये भागवतम में सब कुछ है, तो यह बात बतला देना चाहिए कि देखो भाई ये भगवान के साथ भी हुआ था, केवल आपके ही साथ नहीं हुआ था। जो भगवान प्रथम बार जब अवतरित हुए थे इस धराधाम पर पूर्व स्वर्ग में कृष्णी गर्भ के रूप में सुतपा और कृष्णी के यहां, तो उन लोगों ने भगवान से उनके समान पुत्र मांगा था, भगवान के समान, तो भगवान तो उस समय अब वरदान देना ही था तो वरदान दे दिए। लेकिन भगवान बाद में सोचे अदृष्टअंतम लोके, जब देखे कि संसार में हमारे सिलोदार्य गुणों समम मेरे समान कोई है ही नहीं, तब भगवान को तीन बार आना, अहम सूतो बाम भवम कृष्ण गर्भ इति सुतु, दो बार वो जन्म लिए आए, एक बार बामन के रूप में और दूसरी बार कृष्ण गर्भ के रूप में आए और तीसरी बार आए हैं कृष्ण के रूप में। तो वैसे ही आपने 1,00,000 कहने के लिए दे दिया, किसी कारणवश नहीं दे पाए तो आपको 3,00,000 देना चाहिए, वैसे प्रचार करना चाहिए। तो ये भागवतम से सब सीखना चाहिए, हम कोई स्पेकुलेशन नहीं, जाए श्री राधा कुंड भगवान की जाए। अब देखिए एक बात और यहां पर समझने योग है, देखिए देवकी और वसुदेव भगवान के नित्य माता पिता हैं, ये नित्य माता पिता हैं। यहां पर सुतपा और कृष्णी चाहे अदिति और कश्यप, ये सब देवकी वसुदेव के अंश थे, तो भगवान भी उस समय षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान नहीं थे, भगवान के अंश थे, वामन भगवान भी अंश थे।
ये लोग अंश थे उनके। अब इस बार ये प्रथम बार ये लोग आए, भगवान आए हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, अपने इटर्नल माता पिता देवकी और वसुदेव के पास। यह बात सैद्धांतिक रूप से भक्तों को समझना चाहिए। अब ये सब बतलाने के बाद भगवान लास्ट में कहते हैं देवकी और वसुदेव से, ये बात भगवान सुतपा और कृष्णी चाहे अदिति और कश्यप से नहीं कहे, जो श्लोक संख्या 45 में भगवान कह रहे हैं। कहते हैं जुआ माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो यास एथे मदगतिं पराम। यहां पर कह रहे हैं जुआ माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन च असकृत। अब एक साथ में दो काम करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि आप लोग मुझको, मुझ में अपना पुत्र भाव रखना और ब्रह्म भाव रखना। तो ये तो बड़ा जटिल मैथमेटिक्स हो गया, जटिल समस्या हो गया। ठीक वैसे ही हो जैसे भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ठीक वैसे ही यहां पर कह रहे हैं पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन। तो पुत्र भाव के रूप में और भगवान के भाव के रूप में दोनों भाव में कैसे हो सकता है? जब भगवान का भाव रहेगा तो पुत्र भाव नहीं हो सकता है। और वैसे भी देवकी और वसुदेव उनको उनको ज्ञान हुआ, किस रूप में ज्ञान हुआ? भगवान के रूप में ज्ञान हुआ, इसीलिए उन लोगों ने प्रार्थना किया, ब्रह्म भाव में हुआ था, पुत्र भाव में नहीं हुआ था। और पुत्र भाव कैसे होगा? तो एक आचार्य कहते हैं कि जब भगवान, जब माता ने कहा था कि अपना रूप त्याग दीजिए, तब जब भगवान त्याग दिए जो रूप, तब पुत्र भाव हुआ। पता नहीं कल मैं यह बतलाया था कि नहीं, नहीं मैं बताया था कि आप लोगों को मैं कल बताऊंगा कृष्ण के आविर्भाव का। देखिए जब भगवान चतुर्भुज रूप में, ये बहुत सैद्धांतिक बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको क्लियर करना है कि भगवान जब चतुर्भुज रूप में अवतार लिए कंस के कारागार में, उसी समय शिवाजी गोस्वामी के अनुसार उसी समय अष्टमी के दिन, ये अष्टमी का दिन था, यशोदा जी के यहां पर एक पुत्र का उत्पत्ति हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय, यानी अष्टमी के दिन। तो यशोदानंदन जो है वो भी अष्टमी को आए, और देवकी नंदन जो है वो भी अष्टमी को आए, दोनों अष्टमी आए। और जोग माया जो है वो नौमी को आई, जोग माया नौमी को आई, यानी आधा घंटे के बाद में जोग माया का प्रकट हुआ, प्रकट हुआ नौमी को आई। और आधा घंटा समय यहां पर कैसे लगा? वह ऐसे लगा कि जब भगवान से माता देवकी ने प्रार्थना किया और वसुदेव जी प्रार्थना किया तो आधा घंटा लग गया, और बाद में उन्होंने कहा कि हमसे आप इस रूप को त्याग दीजिए, भगवान समझाए, इस समय आधा घंटा लग गया। उसके बाद भगवान छोटे द्विभुज रूप धारण कर लिए। अब प्रश्न उठता है कि वहां पर जब वसुदेव जी गए, चाहे यशोदा रानी जब जगी तो अपने पास तो एक ही बच्चा देखा, जब वसुदेव जी गए कृष्ण को लेकर के तो वहां पर तो एक ही बालिका देखे, दो तो नहीं थे वहां पर। अब आचार्य लोग उसका खुलासा करते हैं, व्याख्या करते हैं कि कैसे जो भगवान आए थे वहां पर यशोदानंदन के रूप में, तो जे वही माता देवकी ने प्रार्थना किया कि आप उपसंहरा विश्वात्मनो रूपम अलौकिकम, इस अलौकिक रूप को आप त्याग दीजिए, तो भगवान वो अलौकिक जो रूप था, चतुर्भुज रूप, वो अंतर ध्यान हो गया और भगवान के अचिंत शक्ति के द्वारा जो यशोदा नंदन थे वो देवकी और वसुदेव के पास आ गए। इसीलिए कहा जाता है कृष्णा अवतार न कि वासुदेव अवतार, इसे कृष्णा अवतार कहा जाता है। तो दोनों दोनों जगह कृष्णा अवतार हुआ था है? तो एक तो यह व्याख्या है। दूसरा व्याख्या है कि जब वसुदेव जी आए है? तो जोग माया अपने प्रभाव से भगवान को छिपा दी, जोग माया के प्रभाव से भगवान छिप गए। केवल जोग माया, केवल वसुदेव जी केवल जोग माया को ही देखे, भगवान को देख नहीं पाए। माया में बड़ी शक्ति है जी। जब भगवान गए थे दुर्योधन के पास तो दुर्योधन भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाया। भगवान थे, सब लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन माया कितनी प्रबल है, माया कितनी प्रबल है कि दुर्योधन समझ नहीं पाया कि भगवान है, दुर्शासन नहीं समझ पाया। तो वैसे ही वसुदेव जी, भगवान वहीं पर हैं, लेकिन जोग माया छिपा दी है। तीसरा चीज यह है, भगवान ऐसी बात को भगवान भी कहते हैं, नाहम प्रकाशो सर्वत्र जोग माया समाध। भगवान अपने को छिपा लिए जोग माया के द्वारा, और भगवान की अचिंत शक्तियां हैं जिस शक्ति के चलते वसुदेव जी दिख नहीं पाए। तो यहां पर पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन इसका सिंपल उदाहरण मैं देता हूं अपने अनुसार, कि जैसे किसी बाप मां का बेटा है, जब बेटा 5 साल तक रहता है, जब नंगा घूमता रहता है, तो उस समय बाप मां का जो संबंध होता है, हम सब लोग बाप मां के अपने बेटे हैं, तो हम छोटे थे 5 साल तक तो माँ हमारा हमें खिलाती थी, नहलाती थी, कपड़ा बदलती थी, सब कुछ। लेकिन जब थोड़ा हम बड़े हो जाते हैं, 10-20-25 साल के हो जाते हैं, तो क्या माँ हमको नहलाती है, हमको कपड़ा बदलती है, हमको खिलाती है? नहीं। लेकिन पुत्र तो हम है ही ना, बाप माँ के पुत्र तो है ही ना। यहां तक यशोदा रानी बड़ी दुखी रहती थी एक बार, जब भगवान पौगंड लीला करना प्रारंभ कर दीजिए तो यशोदा रानी कहीं कृष्ण को क्या हो गया। पहले मैं उसे खिलाती थी, अभी कहता मैं अपने हाथ से खा लूंगा। पहले मैं उसको स्नान कराती थी, अभी उसको लज्जा लगता है, हमसे छिप कर स्नान करता है, वो कपड़ा पहनता है। यशोदा रानी समझ नहीं पा रही थी कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। तो ब्रह्म भावेन का मतलब ईश्वर भाव, ब्रह्म भावेन, पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन। तो देवकी वसुदेव जहां की नंद गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा, उनके पास केवल पुत्र भाव था, ब्रह्म भाव कभी हुआ ही नहीं। यहां तक कि जब ये विरह का बात है, जब कृष्ण मथुरा में थे और वे आ नहीं पा रहे थे, तो किस प्रकार से समय बीत रहा था ब्रजवासियों का, नंद बाबा यशोदा मैया किस प्रकार से विरह वेदना में थे। कि नंद बाबा जब गए थे मथुरा कृष्ण के साथ में, तो उन्हें पता चला कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है, कृष्ण जो है वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। लेकिन नंद बाबा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, कहीं वो मेरा पुत्र है, तो ब्रह्म भाव कभी आया ही नहीं। वैसे ही कृष्ण को जब लोग कहते थे, जब कृष्ण किसी असुर को मार लेते थे, कहते थे कि हाँ गर्गाचार्य कहे थे नारायणो सम, ये नारायण के समान है, नारायण का अवतार है, ये नारायण है, ये भगवान है। तो कृष्ण कहते कृष्ण इधर आओ, तो भगवान है, मैया कान पकड़ दे, कृष्ण रोने लगते थे, तो भगवान है, भगवान रोता थोड़े है। तो मैया कभी कृष्ण को भगवान नहीं समझी, ब्रह्म भाव नहीं आया यशोदा में। लेकिन देवकी वसुदेव के लिए भगवान कहते हैं, जुआ माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत चिंतयंतो कृत स्नेहो। वाह क्या सुंदर बात, चिंतयंतो, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतयंतो। और यही बात भगवान हम लोगों के लिए कहे हैं, जो बात यही भगवत गीता है, यह परंपरा भगवान जो कहते हैं यहाँ पर यशोदा सॉरी देवकी और वसुदेव को वही बात हमें कहते हैं अनन्य चिंतयंतो मामी जना प्रीपास्ते तेषां नित्यवृत्तानां योगक्षेमो महामि हम कभी वही कहते हैं चिंतन करो चिंता मत करो चिंतयंतो कृता स्नेहो चिंतन करो स्नेह के साथ में भक्ति भावित भाव के साथ में स्नेह करो या एथे मद गति पराम और जीवन के अंत में मेरे गति को प्राप्त करोगे मेरे पास आओगे क्योंकि देवकी और वसुदेव भगवान के इटर्नल माता पिता हैं तो ये लोग पुनः गोलोक वृंदावन में द्वारिका में पधारेंगे द्वारिका पहुंचेंगे ये लोग तो यहां पर भगवान देवकी वसुदेव को संतावना दिए विष्णी और सुतपा को नहीं कहे कि आप मेरे पुत्र के रूप में मानो ये करो वो करो और अंत में मेरे धाम में आओगे वे अदिति और कश्यप को नहीं कहे क्योंकि वे लोग इनके अंश हैं वे लोग भगवान भी अंश भाव से आए थे वो लोग भी अंश भाव है ना लेकिन यहां पर जो है भगवान के इटर्नल माता पिता हैं अब इतना कहने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति उक्तवा आसित हरितुष्णिम भगवान आत्माया पित्रो संपश्चितो सद्ध बभूव प्राकृत शिशु अब भगवान तुरंत उन लोगों के सामने ही देखते देखते अपने को एक प्राकृत शिशु के रूप में छोटा रूप धारण कर लिए प्राकृत शिशु के रूप में हो गए और भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझको यहां से नंद गोकुल ले चलिए तथा सौरी भगवत प्रचोदित देखिए यहां पर इनडायरेक्ट भाव से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें प्रचोदित कहकर करके कि भगवान की क्या इच्छा थी इस बात को वसुदेव जी समझ गए तो ततश्च सौरी भगवत प्रचोदित ये सूरवीर हैं वसुदेव जी कोई समान नहीं है सूतम समादाय ससूतिका गृहात यदा बहिर्गंतु मियेत तर्यजा या जोग माया या जनी नंद जाए या तो भगवान यहाँ पर वसुदेव जी को सौरी कहा गया है अब जो भी काम वसुदेव जी करने जा रहे हैं ये सूरवीर का काम करने जा रहे हैं डरपोक नहीं है वसुदेव जी भगवान के मन स्थिति को समझ करके वसुदेव जी भगवान को उठाए और लेकर के चल दिए कहां जाने के लिए नंद गोकुल जाने के लिए वहां से वे चल दिए अब रास्ता में विभिन्न प्रकार का विपत्ति आया लेकिन सब कुछ भगवान के कृपा से सॉल्व होते गया कोई तकलीफ नहीं हुआ जैसे जैसे गोकुल के निकट जा रहे थे यथा यथा गोकुल निकटे गमनम तथा माया सन्निध्यात गोकुल में कौन थी माया थी तो जैसे जैसे माया के निकट जाएंगे वैसे वैसे परेशानियां आएगी ध्यान रखो सब भक्त लोग तो इसीलिए माया के निकट नहीं जाना चाहिए तो जैसे जैसे माया के निकट वसुदेव जी को तकलीफ हो गया जो भगवान को धारण किए थे हम किस गली के हैं हम कहां के हैं हम तो भगवान को धारण करने का यहां पर तो मन मनस्का है वसुदेव जी एक तरह से हम लोगों के लिए भगवान कहते मन मना भव अपना मन मुझ में लगाओ हमारा मन तो भगवान में लगा नहीं हुआ है और वसुदेव जी मन मनस्का है वसुदेव जी के मन में भगवान निवास कर रहे हैं वसुदेव जी उनको लेकर जा रहे हैं उन पर भी उन्हें कितना तकलीफ हुआ लेकिन वसुदेव जी को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण है और कृष्ण ही नहीं है उनके साथ में दाऊ जी भी हैं बलराम जी भी हैं तो बलराम जी भी रक्षा कर रहे हैं वसुदेव जी का लक्ष्य बहुत क्लियर था और लक्ष्य क्या था बता सकते हैं आप लोग हाँ लक्ष्य क्या था वसुदेव जी का, लक्ष्य क्या था? हैं वो कुछ आवाज आ रहा है, कोई ऑन कर दिया लगता है। एनीवे लक्ष्य आप लोग जानते हो, लक्ष्य क्लियर था, नंद गोकुल जाना, उनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था। तो लक्ष्य की प्राप्ति में कल ही बताया था बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, हम लोगों को रेडी रहना चाहिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए, रेडी रहना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे लक्ष्य पूर्ति में सहायता करते हैं जब हम एक निष्ठ रहें, एकांतिक रहें, जैसे कि वसुदेव जी थे। वसुदेव जी भगवान को सिर पर धारण करके जैसे जैसे गोकुल में पहुंचे, माया देवी विद्यमान थी, वैसे वैसे उन्हें अधिक क्लेश होता गया। अब कारागार से निकलते ही जो भी हुआ, अब जमुना जी के किनारे गए, वहां पर वर्णन किया गया है कि जमुना जी का परिस्थिति क्या था। इनमें मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर आया हुआ है कि चार कारण था कि जमुना जी में जल में उफान आ गया था, और चार कारण था जिसे जमुना जी स्थान दे दी, जगह दे दी। तो उसको हम यहाँ टच नहीं करेंगे, कारण क्या था। जैसे पहला कारण था जमुना जी को कि कृष्ण आ रहे हैं, जमुना जी देखे कृष्ण की पटरानी है जमुना जी, तो प्रभु आ रहे हैं, और जमुना जी यह विचार की और उनमें इतना प्रसन्नता हुआ, आनंद का आंसू इतना बहा कि जमुना जी में भाव आ गया, इतना बाढ़ आ गया। तो ऐसे ऐसे चार पांच कारण है, और जमुना जी क्यों दे दी जगह, उसके भी चार पांच कारण है। इसमें से एक कारण बता सकता हूं, उन्हें याद अरे रामा अवतार में तो प्रभु श्री राम ने पुल बना करके समुद्र के ऊपर, जो चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, समुद्र चंद्रवंशी हैं, समुद्र चंद्र से समुद्र निकले हैं तो वंशज हैं, चंद्रमा सोम वंश समुद्र है, तो कहे कि उस पर पुल बनाकर चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो सूर्यवंशी हूं। जमुना जी जो है क्या है, सूर्यवंशी है, नाता थोड़ा जोड़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो जमुना जी सूर्यवंशी हैं, जमुना जी जो हैं वो उनका नाम है जमानुजा, जम अनुजा, जमराज जी इनके भाई हैं और ये उनकी बहन है, और ये सूर्यपुत्री है, जमुना जी सूर्यपुत्री है तो सूर्यवंशी हो गए, और कृष्ण जो है वो चंद्रवंशी हैं, सोम वंशी हैं, तो ये सोम वंश में कृष्ण आए हुए हैं और जमुना जी सूर्यवंशी हैं। तो इसीलिए जमुना जी सोची कि रामावतार में बड़ा गड़बड़ हो गया था, ऐसा ना हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने जगह दे दिया। तो एनीवे दूसरा बात था कि जमुना जी भगवान के लीला में सहायक थी, इसलिए जब वसुदेव जी गए तो भी जगह दे दी, स्थान दे दी, और जब आए जोग माया को लेकर के तो भी स्थान दे दी, क्योंकि कृष्ण को गोकुल ले जाना भी कृष्ण का इच्छा था और जोग माया को लेकर के आना भी कृष्ण का इच्छा था। ये दोनों कृष्ण का लीला था, और कृष्ण लीला में सहयोग की जमुना जी, तो इस प्रकार से लेकर के गए। और यहां पर एक शब्द आया हुआ है कि वो कहां पहुंचे, श्लोक संख्या 51 में आया है, नंद ब्रज सौरी उत्पेत्य तत्रतान गोपान प्रसुप्ता उपलब्ध निद्रया सूतम जसोदा शयने निधाय तस्सुताम उपादाय पुनः गृहान आगत अनागता। तो जब लेकर के गए, देखिए ये भी जोग माया का कृपा था, जो भगवान का अवतार हुआ चाहे गोकुल में चाहे मथुरा में, जोग माया ऐसा कार्य की, ऐसा कार्य की कि प्रगाढ़ निद्रा में सब लोग सो गए थे, मथुरा वाले ही प्रगाढ़ निद्रा में सोए, जोर से वर्षा हो रहा था। हम ब्रह्मचारी भक्तों को तो मालूम होगा आजकल वर्षा का दिन है, जब जोर से वर्षा होता है सुंदर सुशीतल हवा बहता है तो मंगला आरती आने में थोड़ा तकलीफ होता है, बड़ा अच्छा नींद आता है सुबह सुबह, जब वर्षा होता हो तो खूब नींद आता है। तो जोग माया ने सुला दिया था, मथुरा वाले स्लंबर में थे, पता भी नहीं था कहाँ थे, लेकिन गोकुलवासी भी सोए थे, लेकिन जोग माया के कृपा से वो कृष्ण लीला का दिग्दर्शन कर रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, सब कुछ का कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे थे। धन्य है गोकुलवासी, धन्य है भक्त लोग, चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे स्वप्न अवस्था में हो, निरंतर कृष्ण के साथ रहते हैं। तो गोकुलवासी ऐसा थे। तो नंद ब्रजम शौर्य उपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तान प्रकृष्ण रूपेण सुप्तान, वो सोए थे प्रगाढ़ निद्रा में, अनुलब्ध निद्रा या प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे। अब वसुदेव जी, मैं कल बताया था शायद या कभी बताया होगा कि वसुदेव जी नंद बाबा के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और वे जा रहे हैं और कहां पहुंचे, जसोदा सयने शब्द आया हुआ है, कहीं कहा है जसोदा भवन है, ओल्ड टेक्स्ट में आया हुआ है जसोदा भवन। आजकल लोग कबूतर खाना में रहते हैं, वो डब्बा में एक बक्स में, आजकल जगह नहीं है, घर नहीं है। पहले जमाने में स्त्रियों के लिए अलग घर था, पुरुषों के लिए अलग घर था, तो नंद बाबा वगैरह के लिए अलग घर था और स्त्रियों के लिए अलग। वो पुरुषों का जो घर होता है हमारे यहाँ लोग दलान कहते हैं, तो दलान में 15-20 लोग भी सो सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को प्राइवेसी चाहिए, उनका अपना रूप। जैसे आप सब लोग जानते हो जो ब्रह्मचारी रहते हैं तो एक रूम में 5-6 ब्रह्मचारी सो सकते हैं, गृहस्थ बनने पर थोड़े अपना अलग रहना पड़ेगा। तो स्त्रियों के लिए स्पेशल घर हुआ करता था। तो यहाँ जा रहे हैं, देखिए नंद बाबा के प्रगाढ़ मित्र हैं, बंधु हैं वसुदेव जी, 12 बजे रात के बाद अर्धरात्रि के बाद जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, और वहां कहाँ जा रहे हैं, जसोदा सयने, जसोदा जी के निवास स्थान में जहां जसोदा जी रहती है। मान लो कोई देख लेता रात को तब तो दोस्ती रहती, लोग क्या कहते, अरे वसुदेव जी तो पतित हो गए। लेकिन वसुदेव जी ये सब नहीं सोचे, इसीलिए आप आया हुआ है सौरी, वो सूरवीर थे, डर नहीं रहे थे, वो तो भगवान का आज्ञा पालन कर रहे थे। तो भगवान के आज्ञा पालन में कभी डरना मत, जो डरा सो मरा, डरने का नहीं बिल्कुल, भगवान का आज्ञा पालन निर्भय होकर के करो, तब तो भक्ति कर सकते हो, नहीं तो परेशानियां एक के बाद एक आती ही रहेगी। तो इस प्रकार से वो वहां पर गए। एक बात और आया हुआ है, देवक्या सैने वहां पर सैन गृह में जा करके, देखिए सज्जन पुरुष प्राय स्त्री के बिछावन को या बेड को सैया को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन वसुदेव जी ये सूर भी रहे, भगवान का आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो इसलिए इस पुत्र को ले जाकर के यशोदा के सैया पर रखे और वहां से पुत्री को उठाए लेकर के यथावत आए मथुरा और फिर कारागार में आए। देवक्या सहने न्यस्त, उसको ला करके देवकी के सैया पर रख दिए और फिर पूर्ववत उनका हथकड़ी लग गया, कारागार बंद हो गया, इत्यादि इत्यादि सब हो गया। अब इसके बाद जब सुबह हुआ तो सुबह होते ही राजश्याम प्रभु, आई विल गो हाफ एन आवर मोर, इज ओके, यू कैन ऑल डू तपस्या फॉर टुडे। बीच में बहुत आवाज आता है, व्हाई सो मच साउंड कमिंग, आई थिंक अदरवाइज एवरीबडी सुन ऑन म्यूट। तो एनीवे थोड़ा तपस्या कर लेंगे आज। अब देखिए उधर सो हुआ, बैर अंतःपुर द्वार सर्वा पूर्वतावृत ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा श्रुत गृहपाला समुत्थिता। देखिए भगवान जब जन्म लिए तो चुपचाप सब काम हो गया, अब जे वही जोग माया आई अब क्या 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 करना चिल्लाना शुरू कर दिए। स्त्रियों का स्वभाव है वो ज्यादा कुछ बोलती रहती हैं, तो बचपन से ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बालिका थी वो लगी रोने और जोर जोर से रोने लगी। अब जोर से रो रही थी तो द्वारपाल लोग थे, जो मगधी हैं बिहार के द्वारपाल लोग थे स्पेशल, गृहपाला द्वारपाल लोग समुत्थिता तुरंत उठे हैं। अब दौड़ रहे हैं कंस के पास जाने के लिए, उन लोगों को प्राइस लेना था ना कि कौन सूचना देता है भोजराज को। वो सब आए और जेव ही भोजराज को ये बतलाए, यहां पर वर्णन किया गया है कि कंस सुनते ही तुरंत उठा, पता नहीं लुंगी पहना था, गमछा पहना था, धोती पहना था, पैंट पहना था, भगवान जाने क्या पहना था, जैसे था वैसे ही गंजी ही पहना था कि क्या था, दातुन भी नहीं किया, स्नान भी नहीं किया, बाथरूम टॉयलेट भी नहीं किया, जैसे था वैसे ही वहां से दौड़ पड़ा। सह तत्पात तृणम उत्थाय कालो यमतम बिहवला सूति का सूति गृहम अगात तृणम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजम। मुक्त मूर्धजम, उसका बाल खुला हुआ था, बिखरा हुआ था, स्नान तान कुछ भी नहीं किया, वैसे ही भागते हुए आया। जब देवकी देखी, माता देवकी देखी कंस को, तो इनके रोंगटे खड़े हो गए कि दुष्ट आ गया, अब क्या किया जाए। और माता देवकी तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुण असत स्नेह सम तव कल्याणम स्त्री माहं तुम अरहसी। अम माता देव की प्रार्थना करते है, तमाह भ्रातरम देवी, तम आह कंस से, अपने भाई से देवी, देवी यहां पर माता देवकी को कहा गया है क्योंकि भगवान की माता हैं, ये देव स्वरूपा हैं, इसलिए इनको देवी कहा गया है। कृपणा करुणा सती, कृपणा करुणा सती, यहां पर कृपण किसको कहा जाता है, कृपण वह है जो नहीं समझता है कि किससे मांगना चाहिए और किससे नहीं मांगना चाहिए, यानी बिना विचारे जो मांगने लगता है वो कृपण कहलाता है। कृपण सातु विज्ञो यो अनलाच अनल उचित याचक, उसे मालूम है किससे मांगना चाहिए। और माता देवकी को यहां पर कृपण कहा गया है, कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, बेचारी वो जानती है कंस नहीं देने वाला है, कंस में देने की प्रवृत्ति नहीं है, केवल लेने की प्रवृत्ति है, वो देने वाला नहीं है, फिर उससे मांग रही है। तो यहां पर माता देवकी के लिए देवी कहा गया है, कृपणा करुणम सती, ये हमेशा देने वाली है, कभी मांगने वाली नहीं है, ये प्रथम बार कुछ मांग रही है अपने भाई से। जो देने वाला होता है वो कभी मांगता नहीं, सबकी लज्जा, कैसे वो मांगेगा। तो देवकी के लिए देवी कहा गया है, कृपणा करता मरता क्या नहीं करता, वो जानती है कंस नहीं देगा फिर भी मांग रही है। करुणम करुणा बस सती भगवत भक्त माता, यहां पर आएगा सती शब्द का अर्थ होगा कि जसोदा के पुत्री का रक्षा करने के लिए वो भीख मांग रही है, अपने लिए नहीं, जसोदा के पुत्री का रक्षा करने के लिए मांग रही है। कैसे मांग रही, कहते हैं स्वेसु स्नुवेशम तव कल्याणम स्त्री माम माँ हंतु मरसी, हे भैया आप इसको मत मारना, ये स्त्री है, यह आपकी बहू होगी, यह आपकी बहू होगी, आप इसे मत मारा। प्रति बहवो हिंसिताम भ्रात्र शिशव पाप पाप कोपमहा त्वयाम देव निर्देशत पुत्रिका एक प्रदीयताम। प्रति आपने हमारे बहुत पुत्रों को मार चुके हो और वे पुत्र कोई सामान्य नहीं थे, यहाँ पर उपमा दिया गया पावक उपमा, उदम प्रचलित तेजवान थे बच्चे, तेज थे बच्चे, ज्योतिर्मय बच्चे थे, उनको आपने मार दिया है। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करती हूं, पुत्रिका एक प्रदीयताम, इसी बालिका को दो, दूसरा बच्चा नहीं मांगती है कभी, इसी बालिका को दो, मुझे यही चाहिए। प्रश्न होता है क्यों यही चाहिए, क्योंकि यह उनकी पुत्री नहीं थी, यशोदा की पुत्री थी, उसका रक्षा करने के लिए वो मांग रही है। अब जो आए का श्लोक 6 है, ननुहम तेहि वरजा दीना हत सुता प्रभो दातुम अर्षिमंदाय अंगेमा अंगेमाम चरमा प्रजा। और फिर कहती है कि यह जो बच्ची है वो मेरी अंतिम संतान है, ये पेट पछुआ है, अब इसके बाद मुझे कोई संतान नहीं होने वाला है, इसलिए कृपा करके आप इसी को दीजिए। लेकिन बहुत करुणा पूर्वक मांग रही है, लेकिन दुष्ट कंस काहे को देने जाए, उस बालिका को पकड़ा और जे ही मारने गया कि वह बालिका उसके सिर पर पैर रख करके पड़ गई और अष्टभुजा वाली हो गई। जो देवी कंस के हाथ से छूट करके अष्टभुजा वाली हो गई, मैं थोड़ा इसके ऊपर विचार, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, आई थी यह 2 भुजा में, ठीक है, अब हो गई 8 भुजा। कृष्ण आए थे 4 भुजा में और हो गए 2 भुजा। कृष्ण आए थे 4 भुजा में, केवल 2 अस्त्र थे, गदा और चक्र, और इसके 8ों हाथ में 8 प्रकार के अस्त्र हैं, अस्त भुजा अस्त अस्त्रम। तो यह प्रमाणित करता है कि भगवान के जो सेवक होते हैं भगवान से बड़े होते हैं। भगवान 4 हाथ में आए, ये 8 हाथ में, मतलब कि ये डबल काम करने वाली है दुर्गा जी का, इसलिए बहुत प्रभाव है ना इस संसार में। हम लोग भजन करना चाहते हैं लेकिन दुर्गा जी के चपेट में आ जाते हैं, वो डबल काम करने वाली है। और भगवान तो थोड़ा दयालु भी है, दुर्गा जी में थोड़ा भी दया नहीं है, 8ों हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो दया नाम का कोई चीज नहीं है, इनके पास भीख मांगने से कोई फायदा नहीं, कृष्ण फिर भी दया कर सकते हैं। अब वह जोग माया, माया देवी ने कंस को 3 बात बताया, जिसका वर्णन श्लोक संख्या 12 में किया गया है, और कहते हैं कि हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्यों मारना चाहता है, अरे मैं तो अभी अभी जन्म ली हूं, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूं, तू व्यर्थ में मुझे मारने का क्यों प्रयास कर रहे है, प्रयत्न कर रहे है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और दूसरा बात कहती है, जो तुमको मारने वाला है, जिसको तुम अपना शत्रु समझते हो, उसका कहीं जन्म हो चुका है। तीसरा बात कहती है कि देवकी और वसुदेव निर्दोष हैं, इन लोगों को क्यों मार रहे, परेशान कर रहे व्यर्थ में, छोड़ दो इन लोगों को। तो यह बात कह करके देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब जब देवी अंतर ध्यान हो गई तब अब कंस का होश आया, कंस का होश आया, और कंस अब होश में आकर के श्लोक संख्या 15 से लेकर के श्लोक संख्या 22 इन 8 श्लोकों में कंस गीता है, इसे हम कंस गीता कहते हैं, कंस के द्वारा बोला गया एक गीत है, बहुत सुंदर बात कंस कहा है, बहुत सुंदर बात, भक्त का संग होने से क्या फायदा इसको हुआ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असुर प्रकृति वाले लोग होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन देवी में विश्वास करते हैं, तो उसको पूरा विश्वास हो गया, जो जो बात देवी ने कहा, 3 बात कहा, जिसमें से 2 जो बात था, एक तो था कि तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, और देवकी और वसुदेव निर्दोष हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हैं, तो देवकी वसुदेव निर्दोष हैं, इनको परेशान मत करो। तब कंस को दिया, बाप रे बाप, ये जब निर्दोष है, देवी ने ऐसा बात कहा है, तो मैं तो इनको बहुत परेशान किया हूं। तो पहला चीज है रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन और रीयूनिफिकेशन।
तो कंस रियलाइज किया कि मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हुई। तो इन 8 श्लोकों में कंस 4 श्लोकों में क्षमा मांगा है, जो श्लोक संख्या 15 से 18 का वर्णन किया गया है। स्व अपराधस्य कथनम फलम स्यापि च कीर्तनम भ्रामश्चैव अपराधोयम् शोक दूरी कृति तथा। श्लोक संख्या 14 से 18 में 4 बात कहा गया है। कंस कहता है, क्या कहता है? स्व अपराधस्य कथनम, अपने अपराध का वह वर्णन कर रहा है। कहता है अहो भग्निम अहो भाम मयावावत पापमनः पुरुषात् इवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। अब रियलाइज किया, अब रिपीट कर रहा है, पैर पकड़ लिया देवकी और वसुदेव का। कहता है अहो भग्नि अहो भाम, हे मेरे प्रिय बहन और हे मेरे बहनोई जी, मैं क्या कहूं, अरे मैं तो राक्षस हूं। मयावत पाप मना, मैं पापी हूं। पुरुषाद इवात पत बहो हिंसताम सुता, अरे मैं आपके पुत्रों को मैं मार चुका हूं। आपके वो याद होकर रहा था, पुरुषाद मैं राक्षस हूं, इवाम अपत्य बहो आपके बहुत से पुत्रों को मारा, हिंसताम सुता। ये तो हमारे पूजनीय थे, ब्राह्मण थे, मैं इसलिए बहुत पाप किया है। तो इस प्रकार से स्व अपराधस्य कथनम, अपने अपराध का वो वर्णन कर रहा है। दूसरा है फलस्यापि च कीर्तनम, इसका परिणाम क्या होगा, वह श्लोक संख्या 16 में। स्वय तक्त कारुण्य त्यक्त्या ज्ञाति स्वीर्त खलम क्वान लोक वैगमिष्यामि ब्रह्म देव अमृतम स्वसम। कहते मैं ब्राह्मण का हत्या किया हूं, जो भांजे होते हैं, बहन का बेटा होता है वो ब्रह्म देवता कहलाता है। तो कहता है कि अरे बहन, हे बहनोई जी, त्यक्त करुणा, मैं सब कुछ त्याग दिया हूं, मैं बहुत पाप किया हूं, क्वान लोका वैगमिष्यति, मैं किस लोक में जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से और आगे कहते हैं कि ब्राह्मश्चैव अपराधोयम, ये जो अपराध हुआ है भ्रम के चलते, बाप रे बाप, मैं तो समझा था कि मनुष्य ही लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आजकल तो देवता लोग भी झूठ बोल रहे हैं। दैवम अपि अनतम वक्ति न मर्त्या एवं केवलम, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते हैं, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने लोगों ने झूठ बोल दिया ना कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, यदि ऐसा नहीं बोले होते तो मैं थोड़े ये काम करता। तो देवताओं के झूठ बोलने से मैं भ्रम में पड़ गया, और सही में कंस भ्रम में था, उसे पता ही नहीं चला कि 8वां गर्भ कौन है, कुछ पता ही नहीं उसको। तो भ्रामस्य अपराध हो यम शोक दूरी कृतम तथा। अब इसीलिए अंत में श्लोक संख्या 18 में कहता है मा सोचता महाभागम आत्मा जानम सुखदम, आप लोग कृपा करके इसके लिए शोक न करें, जो होना सो तो हो गया। अब उसके बाद अब 4 का जो श्लोक है, 4 श्लोक 19 से 22, मैं इस बिल्कुल संक्षिप्त करूंगा। एवं चतुर्भी लोकेत्यः शोकाभावो निरूपितः तत्वात् बोधेन अपि चतुर्भी शोकनाशनम्। अब सिद्धांत के अनुसार श्लोक संख्या 19 से 22 में सिद्धांत का प्रतिपादन कंस कर रहा है कि संसार में ये देह जो है, देह के लिए शोक, भगवत गीता का उपदेश कर रहा है, आत्मनो नहीं शोको अस्ति, भूय होमादिभूतानि यथा यावन पयान्ति च, सब लोग कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, मरते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब समझाता है, और समझाने के बाद श्लोक संख्या, सिद्धांत के बाद श्लोक संख्या 23 में कहता है क्षमध्व मम दौर्यात्मा साधो दीन वत्सल इति उक्ता अस्त्र मुख पाद श्याल शस्त्रो रथाग्रहित। अब कंस के आंखों से अश्रुधारा निकलने लगे, रोने लगा, यहाँ पर पादो पैर पकड़ लिया, श्याला साला यानी बहनोई का पैर पकड़ लिया और क्षमा करा,
क्षमा मम दौरात्मा, मैं दुरात्मा हूँ, आप लोग मुझे क्षमा कर दे। साधु वो दीन वत्सला, और आप लोग कैसे हैं, साधु हैं, दीन वत्सल हैं, क्षमा कर दीजिए, आप लोग कृपा करके मुझे मत कुछ कीजिए। समझा रहा है कि जैसे आप ही लोग सोचिए, आपके बालकों को उनके कर्म फल के अनुसार उन लोगों को यह हुआ, उन लोगों को ऐसे ही लिखा हुआ था, क्या करें, उनका कर्म फल था कि मामा के यहां से उनको मरना था, और बात सही भी था, उनको श्राप था। तो कहते हैं जैसे आपके बालकों को उनके कर्म बस फल मिला है, वैसे मुझे भी, जब अपने बच्चों को मारा हूं, आपके बच्चों को, तो उसका भी कर्म फल मिलेगा मुझको। अतः आप लोग बालक के लिए शोक मत करें, और न तो मेरे ऊपर दंड देने का कोई विचार करे, मुझको दंड देने का विचार मत करो, और बालकों के लिए भी शोक मत करो, कर्म फल है उसके अनुसार उन्हें मिला हुआ है। तो मानो कोई पूछ सकता है तो तू क्यों क्षमा क्यों मांग रहा है, जब तुम कुछ गलती किया ही नहीं है, वो बालक लोग अपने कर्म के अनुसार उनको फल मिला है, तुमको भी फल मिलेगा, तो तू फिर क्षमा क्यों मांग रहा है, क्षमध्वम मम दौर आत्मा, फिर क्षमा क्यों मांग रहा है, अपने दुरात्मा क्यों कह रहा है। तो क्षमा इसलिए मांग रहा हूं कि आखिर तो आपके बालक थे ना, तो उसके चलते आप लोगों के प्रति मैं अपराध किया हूं, आप लोगों को कष्ट दिया हूं, बेटा आपका था। देखो इसमें समझने का बात है, एक तो बच्चे मारे गए, तो कर्म फल के अनुसार जो जैसा करता है वैसा मिलता है, देवकी वसुदेव का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि बाप माँ थे तो उनको भी दुख हुआ, तो जो दुख हुआ उसके लिए क्षमा मांग रहा है देवकी वसुदेव से। तो यह बात समझने योग है। मैं इसी बात पर विचार कर रहा था, एक कंस का जो बात था इसी पर, कि जो कोरोना वायरस है, जिसको जो होना है वही होगा कर्म के अनुसार। जैसे हमारे परम पूज्य विहोलनेस भक्त चारू स्वामी महाराज, कितने लोग सोचते हैं, एक बार कुछ लोगों ने प्रश्न हमसे किया कि महाराज को नहीं जाना चाहिए था, क्यों चले गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एक कंस के अनुसार वो कर्म फल वैसे ही था, उनको वहीं जाकर के होना था, वैसे ही होना था। और मुझे ऐसा महारोदय सर बड़ा विश्वास है कि काहे जब जो होना है जब वही होगा तो हमें उसके लिए क्यों चिंता करने का। लेकिन फिर भी संसार में है तो लोकाचार कभी निभाना पड़ता है, क्योंकि लोकाचार भी हमको कभी कभी दुख देता है। इसीलिए सैनिटाइजेशन करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये जो हम कर रहे हैं वो करना पड़ता है लोकाचार के लिए। अदरवाइज सिद्धांत के अनुसार जिसको यदि कोरोना वायरस से मरना लिखा है तो होगा ही, चाहे कितना भी आप ये करो। मैं एक कविता बनाया हूं, हमारे यहाँ बिहार में जब जाड़ा का दिन होता है ना, तो ये जाड़ा कहता है कि बचवन के, सुनो रायश्याम प्रभु आपके लिए अच्छा है, वो जाड़ा कहता है कि बचवन के छुअब ना जवन का लईहन भाई, आ बुढ़वन के छोड़ब ना कतनो ओढ़िहन रजाई। इसका मतलब समझिए, इसका परपट समझिए। जाड़ा कहता है कि बचवन के छुअब ना, जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं स्पर्श नहीं करूंगा, देखो जाड़ा का दिन बच्चे नंगे घूमते रहते हैं, उन्हें कोई जाड़ा लगता ही नहीं। जवान का लगिहन भाई, और जो जवान लोग हैं वो हमारे भाई हैं, तो दोस्ती उनसे कर लूंगा। और बुढ़वन के छोड़म ना, जो बुढ़े लोग हैं उनको नहीं छोड़ूंगा, कतनो ओढ़िहन रजाई, कितना भी रजाई ओढ़ेंगे लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इसी पर मैंने बना दिया कोरोना के लिए। कोरोना भी कहता है बचवन के छुअब ना जवन का लगिहन भाई, आ बुढ़वन के छोड़म ना कतनो खइहन दवाई। तो कहने का मतलब यह है कि कहता है कोरोना कि बच्चों को नहीं छूंगा, और जवान लोग हैं उनके पास इम्यूनिटी ज्यादा है तो उनके पास दोस्ती कर लूंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा। और बुढ़वन के छोड़म ना, जो बुढ़े लोग हैं ना उनको नहीं छोड़ूंगा, कतनो खइहन दवाई, कितना भी दवा क्यों ना खा ले। तो कोरोना का ये फॉर्मूला है आज के लिए, ये कोरोना का फॉर्मूला है। तो मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो कंस कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, कि वास्तव में सब लोग अपने कर्म के अनुसार इसलिए हम लोग अपने साधन भक्ति में लूज नहीं रहना चाहिए। स्पेशली आजकल के मैं भक्तों से कहूंगा कि भले लॉकडाउन है, ये है वो है, लेकिन कोरोना वायरस से भी स्ट्रॉन्ग वायरस जो है वो माया वायरस है। कोरोना वायरस हमारे शरीर को इफेक्ट करेगा, लेकिन माया वायरस हमारे कॉन्शसनेस को, मन को, भक्ति को, सब कुछ को इफेक्ट करेगा। इसलिए प्रिय भक्त लोग, माया वायरस देखना कि अटैक नाम हो जाए माया वायरस के द्वारा। इस प्रकार से कंस कह करके उन लोगों से क्षमा मांग कर करे आज्ञा लेकर के अपने भवन गया, रात भर विश्राम किया। दूसरे दिन अपने सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सोचा कि ये राज कार्य है, उन लोगों से पूछा नहीं था, अपने मन से चला गया था, सब वृतांत बतलाया। और कंस बड़ा भयभीत था, तो मंत्रियों ने कहा महाराज आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये देवता लोग क्या कर सकते हैं, अरे आपने कितने बार देवताओं को शरण दिया, आपको देख करके तो पेशाब पैखाना करने लगते हैं, वो क्या करेंगे देवता, तब वो छिप जाएंगे, तो आप इसके लिए डरिए मत, हम लोग आए ना अभी, काहे चिंता करते हैं। कहते हैं उनसे नहीं, लेकिन भगवान शिव और ब्रह्मा बड़े देवता हैं, अरे उसका लिए चिंता मत करो, भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, और शिव तो पर्वत पर निवास करने वाले हैं, यहाँ विष्णु तो डरपोक आदमी है, विष्णु तो सबके हृदय में छिप जाता है, तो इसके लिए आप डरो मत। अब हम जा रहे हैं, जो विष्णु छिपा हुआ है सबके हृदय में, उसको निकालने का तरीका हम जानते हैं, और वह तरीका है वैष्णवों को परेशान करना। यदि वैष्णवों को परेशान करेंगे तो विष्णु जरूर निकलेगा। इस प्रकार से ये लोग कह रहे थे। ये अंतिम श्लोक जो है पांचवा, अच्छा चौथा अध्याय का, उसको थोड़ा मैं कहता हूं। आयु श्रिय जसो धर्म लोका नाम आस एवं चह अंति श्रेयान सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम कहा गया। जो जो महत पुरुष हैं यानी भक्त लोग हैं, उनके चरणों में भूल करके भी कोई अपराध न करे। वैष्णवों के चरणों में किया गया अपराध जो होता है वह आयु को नष्ट कर देता है, धन को नष्ट कर देता है, जस को नष्ट कर देता है, धर्म को नष्ट करता है, लोक लोक परलोक को नष्ट कर देता है। हम तीसरे आंशिक सर्वाणी सब प्रकार के मंगल को अमंगल कर देता है। पुंसो महत अतिक्रमा, जो महत्पुरुष के चरणों में अपराध करते हैं, तो वैष्णव के चरणों में अपराध कभी नहीं करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इति धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो भागाते 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 राजधानी एक्सप्रेस चला करके खत्म कर दिए चार अध्याय। चलिए राजस्थान प्रभु, धन्यवाद। एनी क्वेश्चन और कमेंट? एक सेकेंड, अभी सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, चाहे सबका दर्शन मिल जाएगा। यस गो अहेड। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। ओके गो अहेड।
हरे कृष्णा प्रभु।
यस नाउ आई कैन हियर।
हरे कृष्णा प्रभु।
कुछ सुनाई नहीं पड़ा, लगता डबल माइक चल रहा है इसलिए सुनाई कुछ नहीं पड़ा मुझे। कुछ सुनाई नहीं पड़ा है, आज कुछ गड़बड़ लग रहा है। यस गो अहेड।
हां हरे कृष्ण बोलिए। तो आपने बहुत सुंदर बता दिया आज भी। तो जैसे कि पहले दिन आप बोल रहे थे कि आप उधर कानपुर में प्रार्थनाओं के ऊपर बोल रहे थे, तो मेरा भी एक प्रश्न था प्रार्थना के बारे में। श्रीमद् भागवतम में बल्लभ महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से प्रार्थना करते हैं नरसिंहदेव को, तो उसमें एक श्लोक आता है बालस्य नेह शरणम् पितरौ नरसिंह। तो उसमें जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है कि तावत् विभो तदुक्ता
उपेक्षितानं।
तो इस उपेक्षितानं का आपने जिसने मतलब
भगवान ने नकार दिया।
हाँ, भगवान ने जिनको जीवात्माओं को नकार दिया है या उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। और श्री मतलब चैतन्य चरितामृत में भी ये आता है कि जब वासुदेव दत्त वो आउट ऑफ कंपैशन बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु को, तो उस वक्त चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप जीवात्माओं के बारे में मत सोचिए, उसका सब इंतजाम मैंने कर लिया है। तो ये दो चीजें हैं। और इसके बाद एक और है कि जो मतलब हम लोग जानते हैं कि कृष्ण बहिर्मुख भगवान चा करे निकट 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 से माया खरे झपटिया दे। सो इस चीजों के बारे में कि अभी जीवात्मा जो है ऑलरेडी बहिर्मुख है, और उस श्लोक में भागवतम में भी ऐसा बताया गया है कि कृष्ण ने जिसको रिजेक्ट किया है या जिनको एक्सेप्ट नहीं किया है या जिनको कृष्ण ने निग्लेक्ट किया है, तो फिर ये जो जीव है मतलब जीवात्मा है तो उनके लिए क्या होप है, क्योंकि पहले से ही जीव बहिर्मुख है और अभी कृष्ण ने फिर से अगर उनको नकार दिया तो वो फिर कैसे आ पाएंगे।
तो इसलिए तो आपकी आवश्यकता है ना, इसीलिए वैष्णव क्या आवश्यकता है, आप अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, इसलिए वैष्णवों की आवश्यकता है। वैष्णव लोग कृष्ण से भी ज्यादा दयालु होते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इसी काम को करने के लिए। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनीय गौर तुषे नमः। एक तो बदान्य होता है और एक महाबदान्य होता है। बदान्य जो होता है निडी व्यक्ति को देता है, और महाबदान्य सबको देता है बिना डिस्क्रिमिनेशन का। तो वैष्णव लोग महाबदान्य हैं। वो जो बहिर्मुख जीव हैं उनको भी कृष्ण काम से देते हैं, केवल वैष्णव ही बहिर्मुख जीव को भी उन्मुख बना सकते हैं। ये वैष्णव का धर्म, इसलिए हम लोगों कंधे पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज क्लियर?
यस सर जी, धन्यवाद।
ओके, राम प्रिया का भी एक प्रश्न है, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई अनम्यूट कर ले इनको। हाँ,
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, राधेश्याम प्रभु को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने एक बहुत सुंदर वर्ड यूज किया, एकांतिक। एकांतिक तो प्रभु जी, जैसे भगवत गीता के 13वें चैप्टर 13.8-12 में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, अ डिवोटी शुड एस्पायर टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस। तो ये एकांतिक या सॉलिट्यूड वर्ड को मतलब भक्त लोग कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करें, प्रभु जी थोड़ा सा इस पे अगर आप इलाबरेट करेंगे, हाउ कैन वी एस्पायर टू लिव इन सच अ वे विद सॉलिट्यूड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज।
आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो ना?
हाँ।
तो जब जप करते हो तो ध्यान रखो कि और विचार कुछ ना आए, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही आपके मन में आए, यही है एकांतिक भक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि अपने अपने रूम में लो करके अकेला रहो, जप करो, भक्तों के साथ मंगल आरती करो, मत जाओ, एकांतिक भक्ति नहीं है, बल्कि भक्तों में के संग में किया गया भक्ति। भक्ति का मतलब ही होता है भक्तों के संग में किया गया। सताम प्रसंगा मम बीर्ज संविदो भवंत हृत करण रसायन कथा तज्जो सनादाद अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिम भक्ति अनुकमिष्यति। भक्ति की वृद्धि होती है जब साधुओं की संगति में की जाती है। लेकिन एकांति का मतलब होता है कि सबके साथ में रहकर भी साथ में न रहना। इसका मतलब यह है कि हमारे पास काम क्रोध मोह मत्सर्य लोभ है, हमारे पास अंदर है, अंदर का चीज है, लेकिन उसके साथ न रहना, ये एकांतिक भक्ति है। न कि अकेला में जाकर के प्रहलाद महाराज को कंडेम करते हैं वैसे लोगों को, उनको प्रचार करना है। तो एकांतिक का मतलब होता है फोकस्ड भक्ति। जैसे वसुदेव जी का फोकस था, हमें नंद गोकुल जाना है, बहुत परेशानियां आई, लेकिन एकांतिक भक्ति उनका था ना। क्लियर?
क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
कल आपने बताया था कि भगवान का जन्म जो भाद्र महीने में होता है, भाद्र पक्ष में, लेकिन हम कुछ बाहर,
आप थोड़ा दूर से बोलो, मुझे क्लियर नहीं पड़ा। हम बोले
आपने कल कह रहे थे कि भगवान का जन्म जो है भाद्र पक्ष भाद्र महीने में होता है, भागवत में भी बताया गया, लेकिन हम देखते हैं कि इस साल का जो जन्माष्टमी है श्रावण में आ रहे, कुछ बाहर के जो कैलेंडर है वो वैष्णव छोड़ते, तो उसका जो विरोधाभास है
अब पता नहीं, ये सब मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कैसे ये हुआ है, जो भागवतम में लिखा हुआ वही मैं वर्णन करूंगा, अपने मन से क्यों करूं। अभी तो मैं इतना दिन से जानता था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है, अभी कुछ समय से सुना हूँ 15 जनवरी को हो रहा है, अब मैं क्या करूं, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना दिमाग एडजस्ट करो, क्या कर सकते हो, माथा पीछे करने ये सिद्धांत तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। ओके somebody asked, कानपुर में कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर दीजिए कानपुर को, और भक्त लोग अपना दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात है कि केवल यहां पर रख करके प्रसाद खा रहे हो। हाँ कानपुर में प्रश्न है। ओके
हरे कृष्णा
हरे बोल, हुई दिस
खड़े हो जाए,
बोलो बोलो
प्रणाम।
हरे कृष्णा, लोकेश्वर प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो दूर से बोलो, प्रियोगवेद माइक ठीक करो। क्या क्या
ब्रज का है,
अच्छा ब्रज का नहीं बोल रहे, ओके ठीक है बोलो। हरे
कृष्ण, कृष्ण लीला में प्रवेश कर लिया, तो प्रभु जी मेरा प्रश्न आपका जो काल का जो क्लास दिया मुझसे, आप जो बोला था द्वादश आदित्य के बारे में, तो आदित्य को, आदित्य को मतलब सूर्य को हम देखते ना, तो द्वादश आदित्य मतलब होते हैं 12 आदित्य, तो उसमें प्रभु जी जो हम लोग देखते सूर्य एक ही, और एक शास्त्र में है द्वादश आदित्य, तो वो आदित्य जो है 12 आदित्य वो कहाँ रहे, जब तो उनका सेवा किया है अथवा इनको दर्शन कैसे मिलते हैं वो थोड़ा जानना है, क्योंकि तो एक ही आदित्य है सूर्य एक ही है, द्वादश आदित्य कहाँ से मतलब कहाँ रहे उनको।
नहीं मैं कहा कि भगवान जो है द्वादशमत पुरुषोत्तम है, द्वादश राशियों के वो आधार हैं, द्वादश आदित्यों के वे आधार हैं, जिस प्रकार से ये जो सूर्य होते हैं वो प्रकाश फैलाने वाले होते हैं, तो उनमें भी जो प्रकाश आता है भगवान के द्वारा आता है, वे द्वादश सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवान हैं, वैसे ही भगवान का लीला प्रकाशमान है, भगवान का नाम प्रकाशमान है, कृष्ण सूर्य सोम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य के समान है, तो वो कंपेरिजन किया गया है, जैसे कहा जाए कि ब्रज कन्हाई किसके अनुसार ओके ब्रज किशोर के समान है, तो समान और उसमें अंतर होता है, तो सूर्य नहीं है, सूर्य के समान वो वर्णन किया गया है कि जैसे सूर्य प्रकाश देते हैं वैसे ही कृष्ण को वर्णन किया गया है। आई डोंट नो इफ आई हर्ड द क्वेश्चन प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एनीवे थोड़ा जो सुनाई पड़ा उसके अनुसार मैं उत्तर देने का प्रयास किया, एनीवे आप बाद में फोन करके पूछ लेना। और कोई प्रश्न, राय श्याम प्रभु नाइस सुशी ईश्वर नाम रुक्मिणी मोहन वेरी गुड थैंक यू।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा, राधा रंजन तुम्हारा क्वेश्चन, तू हमसे अकेले हम बात करना, बोलो 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 बोलो। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, आई मीन बहुत इको इतना है ना, इको बहुत है, बड़ा वो मंदिर हॉल बड़ा है, पता नहीं वो बाउंस हो रहा है, साउंड क्लियर बिल्कुल नहीं है।
भगवान जो है यहाँ इस चरणधाम पर आए और आने के बाद पे उनका लक्ष्य था, नारद मुनि ने जैसा भविष्यवाणी किया था कि वो कंस को पद करेंगे, उस समय एक ही लक्ष्य था कंस को पद, और कंस को पद करने में भगवान श्री कृष्ण ने काफी दिन लगभग 11 साल तक जो है वेट किया। भगवान जब इतना वेट कर सकते हैं किसी चीज के लिए तो हम लोग किसी कार्य
क्योंकि हम भगवान नहीं है, पहला बात तो यह है, पहला बात यह है कि हम भगवान नहीं है। दूसरा बात, भगवान आते हैं तीन काम के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्टता धन संस्थापनार्थाय संभवामी जी को, तो विनाश करना था एक काम है, दो काम और है, परित्राणाय साधुनाम भक्तों को परित्राण करने के लिए, भक्तों का परित्राण उदाहरण कथा सुन करके कीर्तन कर करके, तो अपना कथा जो लीला किए भगवान वो भक्तों के अनुग्रह भूताना मानुषी देह आसतम, भगवान अनुग्रह करने के लिए आए भक्तों के ऊपर वो लीला कर करके, और धर्म संस्थापनार्थ आया और धर्म का स्थापना करना। पहले दिन यदि कंस को मार दिए होते तो हम लोग बैठ करके कृष्ण जन्म कथा कहाँ सुनते हम लोग, तो भगवान बड़े दयालु हैं, तो भगवान का एक कृपा है। जहां तक हम लोग हैं हमारे पास समय नहीं है, हम प्रभुपाद अनुगत हैं, यदि प्रभुपाद ऐसे ही सोचते रहते तो 10 साल में इतना बड़ा स्कैन नहीं खड़ा किए होते। प्रभुपाद जी अनुगत होने का मतलब वी हैव नो टाइम, जो इंटेलिजेंट होता है वो कहता है काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, और जो लेजी होते हैं कहते हैं आज करो सो कल करो, कल करो सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है कई वर्षों, लगता है कि उनका उनके हाथ में ही उनका मृत्यु लिखा हुआ है। एनीवे राधा रंजन प्रभु हमारे अर्जुन हैं, आर्मी के चीफ हैं और बड़े एक्टिव रहते हैं, ऐसे प्रश्न कर दिए दूसरे लोगों के लिए जो लेजी बन गए हैं उनके लिए, तो भक्ति में लेजी मत करो, भक्ति में लेजी मत हो जाओ।
है
मुझे तकलीफ है कि वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, और कितना भी मैं ध्यान लगाऊं, एकांतिक भक्ति करूं आपका बात सुनने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, मैं करूं क्या, डिस्टर्बेंस इतना है।
दूसरा ये कि ये प्रश्न है हमारा कि भक्त लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, उसी की बात है, मतलब अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए
आ रहा हूं,
लेकिन जब भक्त इतना जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो फिर भगवान की वेट करते हैं, 400-492 साल है वहाँ कृपाल में वेट करते रहते।
मैं समझा नहीं सही में, कोई राधेश्याम प्रभु आप समझे हो क्या बोल रहे हैं, आप समझा सकते हैं मुझे, बता सकते हो प्रश्न क्या
है?
बहुत इको है, चार्ट में है तो प्रेम हरिनाम प्रभु को लिखना पड़ेगा।
प्रश्न ये है कि यहाँ तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में भगवान का मंदिर बनाने के लिए भक्तों ने बहुत जल्दी जल्दी किया, फिर भी भगवान की इच्छा के हिसाब से बना सकते हैं ये बात, 492 साल लग गया, तो क्या भगवान वहां भक्तों की इच्छा जल्दी पूरा नहीं करना चाहते थे या भक्त में कुछ गड़बड़ी था?
मैं तो वहां उस समय था नहीं तो मैं क्या जानता हूँ, और जो शास्त्र का बात है कुछ भी अपने भगवान जो हम लोगों की इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए साधन संपन्न हो तो भगवान जरूर पूरा कराएंगे। भगवान संसनिंग अथॉरिटी संसन करते हैं। तो अब क्या कारण था, क्यों नहीं हुआ, अब इसका उत्तर कौन बताने जाए। भगवान की इच्छा ही थी, हो सकता है भगवान श्रेय देना चाहते होंगे मोदी जी को, जो भी है कोई कारण। अब तो स्पेकुलेट करने से क्या फायदा, जो है उसको ही याद रखें, जो हो रहा है उसके लिए उत्साह रखें, जो है उसके लिए आगे बढ़े। अब जो हो गया उसके लिए पास कौन सोचता है, भविष्य पूरा पड़ा हुआ है। बहुत लोग चाहते हैं राम का भक्ति करना, कृष्ण का भक्ति करना, चलो प्रचार करते हैं, लगाओ लोगों को जोर से। प्रभुपाद जी के आने से पहले कहाँ प्रचार हो रहा था, मंदिर में केवल घंटी बजता टुन 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 टुन, कहाँ आरती में कोई संसार दावाना लगाता है, कहाँ होता है। तो इस्कान ने रास्ता दिखाया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस्कान के भक्तों कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, ये प्रचार करना है बहुत जोर शोर से। बहुत लोग उधर माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार करना है, लेकिन इससे पहले अपना उद्धार करना है। भक्तों का पोषण होगा, जितने लीडर लोग हैं उनका धर्म है कि भक्तों का पोषण करें और फिर वो भक्त लोग जाकर के प्रचार करेंगे। ऑलराइट, सुराज श्याम प्रभु, थैंक यू वेरी मच
अपॉर्चुनिटी।
आपका भी आवाज आज पता नहीं क्या हो गया है, सबके आवाज में है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। All right, okay. So everybody, thank you. Panchakalutrivacha Gribasindhyamacha Pattanam Paunam Bhyo Vishnave Bho Namo Namaha. Hari Bol.
Thank you.